एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने इंसान के खुद को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, एक ऐसी किताब जिसने न सिर्फ विज्ञान में बल्कि समाज में भी आप कह सकते हैं हलचल मचा दी थी। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की 1871 की वो जबरदस्त कृति द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स।
हाँ, यानी मानव का अवतरण और लिंग के संबंध में चयन।
जी, और ये किताब सीधे सीधे उस बड़े सवाल से टकराती है जिसे डार्विन ने अपनी पहली मशहूर किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसमें थोड़ा किनारे रख दिया था।
अच्छा, कौन सा सवाल?
यही कि भाई विकास की इस पूरी कहानी में हम इंसान मतलब होमो सेपियंस आखिर हैं कहाँ, हमारी जगह क्या है?
यही मायने रखता है ना, शायद पहले से भी ज्यादा। ये किताब हमें हमारी जड़ों को, हमारी आदतों को, हमारी इच्छाओं को और प्रकृति के इस विशाल जाल में हमारी जगह को समझने में मदद करती है।
बिल्कुल, इसने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को सीधी चुनौती दी, वो मान्यता कि इंसान कोई खास है, प्रकृति से ऊपर की कोई चीज है।
तो चलिए आज इसी सोच को झकझोड़ने वाली यात्रा पर निकलते हैं।
हाँ, लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले मुझे लगता है उस शख्स के बारे में थोड़ी बात करना जरूरी है जिसने ये नक्शा तैयार किया, चार्ल्स डार्विन।
हाँ बिल्कुल, 1809 में जन्मे, 1882 तक रहे, एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी, भूविज्ञानी, जीव विज्ञानी
और यकीनन मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक। और ये कोई मतलब हवा हवाई बात नहीं है।
सही कहा, उनकी जो शोहरत थी वो सिर्फ अटकलों या अंदाजों पर नहीं टिकी थी, इसके पीछे थी जिंदगी भर की बारीक नजर, लगातार किए गए प्रयोग और ऐसे सिद्धांत जिन्होंने सोच की दुनिया में क्रांति ला दी।
और खासतौर पर उनकी वो HMS बीगल जहाज पर की गई 5 साल लंबी यात्रा 1831 से 1836 तक।
जरा सोचिए उस जमाने में पूरी दुनिया का चक्कर लगाना।
हाँ, हजारों नमूने इकट्ठे करना, अलग अलग सभ्यताओं और जीव जंतुओं को देखना, इसी यात्रा ने उनके सिद्धांतों की नींव रखी थी।
और जब 1871 में द डिसेंट ऑफ मैन छपी तब तक तो डार्विन विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे ना?
जी हाँ बिल्कुल, 1859 में उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देकर पहले ही तहलका मचा दिया था।
लेकिन उस किताब में इंसानों की बात खुलकर नहीं की थी उन्होंने।
नहीं, बस इशारों में थी। इस नई किताब में द डिसेंट ऑफ मैन में उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की।
तो ऐसी क्या खास बात थी उनमें जो इस मुश्किल और कहें तो विवादास्पद विषय पर लिखने के लिए उन्हें सबसे सही बनाती थी?
देखिए, एक तो यह कि ओरिजिन के बाद उन्होंने एक दशक से ज्यादा का वक्त सिर्फ और सिर्फ इंसानी विकास से जुड़े सबूत जुटाने में लगाया था।
अच्छा।
दुनिया भर में उनके संपर्क थे, खोजी थे, वैज्ञानिक थे, वो लगातार जानकारी मंगा रहे थे।
और दूसरी बात?
और दूसरी उनकी कमाल की काबिलियत। वो अलग अलग क्षेत्रों से जैसे शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, जानवरों का व्यवहार, इन सबसे मिले सबूतों को एक साथ पिरोकर एक मजबूत तर्क बुन सकते थे।
ये तो गजब की बात है।
और सबसे बड़ी बात, उनमें गजब की बौद्धिक हिम्मत थी, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने वैज्ञानिक नजरिए को इंसानों पर भी लागू किया, ये जानते हुए भी कि ऐसा करने पर समाज और धर्म की तरफ से कितना जबरदस्त विरोध झेलना पड़ सकता है।
हाँ, उस वक्त ये सोचना भी बहुत बड़ी बात रही होगी कि इंसान कोई असाधारण मखलूक नहीं है।
बिल्कुल।
तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में, मतलब इसका मुख्य संदेश क्या है?
इसका सीधा निशाना था सदियों पुराने इस कह सकते हैं घमंड को तोड़ना कि इंसान प्रकृति से बिल्कुल अलग और ऊपर है।
अच्छा।
डार्विन हमें प्रकृति के विशाल परिवार का ही एक हिस्सा साबित करना चाहते थे, कोई भारी मेहमान नहीं।
तो वो क्या साबित करना चाहते थे इस किताब से?
हाँ, डार्विन ने मुख्य तौर पर 3 बातें साबित करने निकले थे। पहली कि इंसान किसी कम विकसित जीव रूप से ही विकसित हुआ है।
ठीक है।
दूसरी, ये विकास हुआ कैसे, इसका तरीका क्या था। और तीसरी, इंसानों की जो अलग अलग नस्लें कही जाती हैं उनके बीच जो फर्क हैं उनका क्या मतलब है।
और ये किताब सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए थी?
नहीं नहीं, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं थी, ये आम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी थी जो डार्विन के पिछले काम यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के नतीजों से जूझ रहे थे, सोच रहे थे कि इसका मतलब क्या है।
सही कहा, ये हमारी अपनी जड़ों पर डार्विन का एक तरह से निर्णायक बयान था। किताब पढ़ने वाले को एक सोच बदलने वाली यात्रा पर ले जाती है।
बिल्कुल, शुरुआत होती है इंसानी खासियत की परतें उधेड़ने से, डार्विन हमारे जानवरों जैसे पूर्वजों के हजारों सबूत पेश करते हैं।
जैसे? किस तरह के सबूत?
जैसे हमारी शारीरिक बनावट में समानताएं, भ्रूण के विकास के शुरुआती चरण जो दूसरे जानवरों जैसे होते हैं, और वो अंग जो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे।
वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स,
जैसे अपेंडिक्स या पूंछ की हड्डी।
हाँ बिल्कुल,
कॉक्सिक्स जिसे कहते हैं।
और फिर
किताब और भी ज्यादा विवादास्पद मैदान में उतरती है, इंसानी मन।
अच्छा, मन के बारे में क्या कहा उन्होंने?
डार्विन का तर्क था कि जिन चीजों को हम सिर्फ इंसानी मानते हैं, जैसे सोचने की ताकत, कल्पना, खूबसूरती को सराहने की क्षमता, यहाँ तक कि धार्मिक भावनाएं, इन सबके बीच दूसरे जानवरों में भी मौजूद हैं।
ओह, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, और यहीं पर उनकी वो मशहूर लाइन आती है कि इंसान और ऊंचे दर्जे के जानवरों के दिमाग के बीच का फर्क, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, असल में मात्रा का है, प्रकार का नहीं।
मतलब हमारा दिमाग उनसे बेहतर है, पर बुनियादी तौर पर अलग नहीं।
एग्जैक्टली, ये बात तो उस समय के लिए हिला देने वाली थी।
यकीनन, और किताब में क्या है?
और फिर आता है किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो यौन चयन यानी सेक्सुअल सिलेक्शन के सिद्धांत पर है।
यौन चयन, ये क्या है?
डार्विन ने देखा कि प्राकृतिक चयन यानी सबसे योग्य का जीवित रहना कुछ चीजों को समझा नहीं पा रहा था।
जैसे कि?
जैसे मोर की इतनी भारी और सुंदर पूंछ या नर पक्षियों के वो चटकीले रंग। ये चीजें तो शिकारियों से बचने में मदद करने के बजाय मुसीबत बन सकती है ना।
हाँ, बात तो सही है।
तो उन्होंने यौन चयन का सिद्धांत दिया जो दो तरीकों से काम करता है।
कैसे?
पहला, नरों के बीच मुकाबला, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, यानी मादाओं को पाने के लिए नर आपस में लड़ते हैं।
इससे सींग या बड़े आकार जैसे गुण विकसित होते।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा मादा द्वारा चुनाव, इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन, यानी मादाएं सबसे आकर्षक या प्रभावशाली नर को चुनती हैं। इससे सुंदर पंख, मीठे गाने या नाच जैसे दिखावटी गुण विकसित होते हैं।
वाह, डार्विन ने इसी सिद्धांत का इस्तेमाल इंसानों में मर्दों और औरतों और अलग अलग नस्लों के बीच के फर्क को समझाने की कोशिश में भी किया।
अच्छा, चलिए इन विचारों को थोड़ा और कुरेदते हैं। शुरुआत करते हैं शारीरिक जुड़ाव से। आपने कहा डार्विन ने हमारे शरीर को ही सबसे बड़ा सबूत माना।
जी हाँ, उन्होंने तीन खास तरह के प्रमाण दिए। पहला है समरूपता, होमोलॉजी।
होमोलॉजी, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि इंसानों और दूसरे स्तनधारी जानवरों, खासकर बंदरों और वानरों के कंकाल, मांसपेशियों, नसों वगैरह के मूल डिजाइन में गजब की समानता है।
जैसे? कोई उदाहरण?
जैसे हमारे हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल के फ्लिपर। अंदर से देखें तो सबका ढांचा एक जैसा है। डार्विन ने कहा कि ये अलग अलग रचना का सबूत नहीं, बल्कि एक साझे पूर्वज का संकेत है।
अच्छा, जैसे एक ही ब्लूप्रिंट से थोड़ा फेर बदल कर अलग अलग चीजें बनाई गई हों।
बिल्कुल, यूं समझ लीजिए।
और दूसरा सबूत?
दूसरा सबूत है भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी। ये तो और भी कमाल की चीज है।
वो कैसे?
उनके भ्रूणों जैसा ही दिखता है।
सच में?
हाँ, कुछ समय के लिए तो उसमें गलफड़ों जैसी संरचनाएं, गिल स्लिट्स और एक छोटी पूंछ भी होती है।
अरे वाह, ये देखकर तो लगता है कि हमारे बहुत पुराने पुरखे शायद पानी में रहते थे।
हाँ, यही तो डार्विन का इशारा था।
और तीसरा?
वो अवशेषी संरचनाएं।
हाँ, अवशेषी संरचनाएं,
यानी हमारे शरीर के वो हिस्से जो अब किसी काम के नहीं लगते,
जैसे पूंछ की हड्डी, कॉक्सिक्स।
हाँ, कॉक्सिक्स, जो हमारे पूर्वजों की पूंछ का बचा हुआ हिस्सा है, या फिर अपेंडिक्स, अक्लदाढ़ और शरीर पर ये जो हल्के हल्के रोए हैं। डार्विन ने इन्हें हमारी निम्न उत्पत्ति की अमिट छाप कहा, मतलब ये हमारे विकास के सफर के छोड़े हुए निशान हैं।
सोचिए, हमारी अपनी पूंछ की हड्डी आज भी उस जमाने की याद दिलाती है ना, कमाल की बात।
बिल्कुल कमाल की बात है।
शरीर की कहानी तो साफ दिख रही थी, पर जैसा आपने कहा, डार्विन का असली क्रांतिकारी कदम था ये कहना कि हमारा दिमाग और हमारी भावनाएं भी इसी विकास की कड़ी का हिस्सा हैं।
हाँ, यहीं पर वो अपनी सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं कि इंसान और जानवरों के मन में कोई दीवार नहीं है, बस एक ढलान है।
अच्छा, कैसे?
वो तर्क देते हैं कि जानवर भी हमारी तरह ही भावनाएं महसूस करते हैं, खुशी, डर, प्यार, जलन।
कुत्तों या बंदरों में तो ये दिखता भी है।
हाँ, और उनमें तर्क, याददाश्त, कल्पना और समस्या सुलझाने की क्षमता के सबूत भी मिलते हैं, जैसे चिंपांजी का औजार इस्तेमाल करना।
और भाषा?
भाषा के बारे में क्या?
डार्विन का मानना था कि इंसानी भाषा भी जानवरों की आवाजों और इशारों से ही धीरे धीरे विकसित हुई है। जैसे जैसे दिमाग विकसित हुआ, वैसे वैसे आवाजें और स्पष्ट होती गईं और भाषा बन गई। और सुंदरता को परखना या धार्मिक भावनाएं।
हाँ, उनका कहना था कि सुंदरता को परखने की क्षमता योर एस्थेटिक सेंस भी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है. नर पक्षी जो इतने सुंदर घोंसले बनाते हैं या नाचते हैं वो क्या है.
बात तो है.
और धार्मिक भावना को भी उन्होंने किसी देवीय देन की बजाय कल्पना, जिज्ञासा और विस्मय जैसी दिमागी क्षमताओं का मिलाजुला नतीजा माना.
और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी नैतिकता की जड़ें खोजना.
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी. डार्विन ने कहा कि जिसे हम नैतिकता या जमीर कहते हैं वो भी प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है.
प्राकृतिक रूप से कैसे?
इसकी शुरुआत हुई सामाजिक प्रवृत्तियों, सोशल इंस्टिंक्ट से, जैसे माँ बाप का बच्चों के लिए प्यार या एक समूह के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति लगाव. ये प्रवृत्तियां समूह को जिंदा रहने में मदद करती थीं.
तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा होना, दूसरों का ख्याल रखना, ये सिर्फ हमें सिखाया नहीं गया बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर मतलब बना हुआ है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के लिए फायदेमंद था.
बिल्कुल, डार्विन के मुताबिक यही बात थी. जब इन बुनियादी सामाजिक प्रवृत्तियों के साथ बढ़ती हुई बुद्धि, सिंपथी मतलब दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता, भाषा और आदतें बनाने की क्षमता मिली
तो क्या हुआ?
तो धीरे धीरे विवेक और नैतिक नियम विकसित हुए. जैसे वो सुनहरा नियम है ना, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो.
हाँ,
डार्विन कहते हैं कि ये नियम भी इसी प्राकृतिक नींव पर कमा है.
वाह, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है. इसके बाद डार्विन इंसानों की उत्पत्ति की जगह और विविधता पर आते हैं ना?
जी हाँ, उन्होंने शारीरिक सबूतों के आधार पर अंदाजा लगाया, जो बाद में सही भी साबित हुआ, कि इंसानों के सबसे शुरुआती पूर्वज शायद अफ्रीका में ही रहते थे.
ऐसा क्यों सोचा उन्होंने?
क्योंकि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार गोरिल्ला और चिंपैंजी वहीं पाए जाते हैं, तो यह तर्कसंगत था.
और इंसानों की नस्लों के बारे में उस पर क्या कहा?
उस पर उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी इंसान एक ही साझे पूर्वज से आए हैं. इसे मोनोजिनिज्म कहते हैं.
अच्छा, उस समय क्या अलग विचार भी थे?
हाँ, उस समय कुछ लोग मानते थे कि अलग अलग नस्लें अलग अलग बनाई गई हैं, पॉलीजिनिज्म. लेकिन डार्विन ने इसका जोरदार खंडन किया.
तो फिर ये त्वचा के रंग या बालों की बनावट जैसे फर्क कैसे आए?
उन्होंने कहा कि ये फर्क मुख्य रूप से यौन चयन और माहौल के असर से पैदा हुए हैं. हाँ, ये सच है कि उनके विश्लेषण में उस जमाने यानी विक्टोरियन युग के कुछ पूर्वाग्रह झलकते हैं.
हाँ, वो तो स्वाभाविक है शायद उस समय के हिसाब से.
जी, जिन्हें आज हम अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन उनका मुख्य जोर इंसानों की एकता पर था.
ठीक है, तो शारीरिक बनावट और दिमाग की बात हो गई, लेकिन फिर वो यौन चयन पर वापस आते हैं, है ना? वो मोर की पूंछ वाली बात.
हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई प्राकृतिक चयन से समझ नहीं आती, जैसे वो मोर की पूंछ या किसी पक्षी का बेहद सुरीला गाना.
हाँ, जो कई बार जान बचाने में रुकावट भी बन सकती है.
बिल्कुल, यहीं से उनका वो यौन चयन का जबरदस्त सिद्धांत सामने आता है.
एक बार फिर से बताएं क्या था वो सिद्धांत.
हाँ, उन्होंने इसे परिभाषित किया, कुछ व्यक्तियों को अपने ही लिंग और प्रजाति के दूसरे व्यक्तियों पर, खासतौर से प्रजनन के मामले में, जो बढ़त मिलती है. और इसके दो मुख्य तरीके बताए.
पहला
लड़ाई का नियम, लॉ ऑफ बैटल. नर आपस में लड़ते हैं मादाओं पर हक जमाने के लिए. इससे उनमें सींग, बड़े दांत या ज्यादा ताकत जैसे गुण विकसित होते हैं, जैसे हिरणों के सींग या शेरों की अयाल.
और दूसरा तरीका?
दूसरा मादा का चुनाव, फीमेल चॉइस. मादाएं अपनी पसंद के नर को चुनती हैं, शायद जो सबसे ज्यादा आकर्षक हो, सबसे अच्छा नाचता हो या सबसे सुरीला गाता हो.
अच्छा, तो इससे क्या होता है?
इससे नरों में रंग बिरंगे पंख, खूबसूरत गाने या नाचने जैसी कलाएं विकसित होती हैं, जैसे स्वर्ग के पक्षी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के अद्भुत पंख और नाच, या बोवर बर्ड्स जो सिर्फ मादा को रिझाने के लिए घोंसले सजाते हैं.
तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं बल्कि प्रजनन की इच्छा और पसंद नापसंद भी विकास को दिशा देती है.
हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रकृति में इतनी सुंदरता और विविधता का एक बड़ा कारण यही यौन चयन ही है.
वाह,
डार्विन ने जानवरों की दुनिया से हजारों उदाहरण दिए इसे साबित करने के लिए. कीड़े मकौड़ों से लेकर मछलियों, पक्षियों और स्तनधारियों तक में इसके सबूत दिखाए.
और फिर
उन्होंने इसे इंसानों पर भी लागू किया.
जी हाँ, आखिरकार उन्होंने इसी सिद्धांत को इंसानों पर भी लागू करने की कोशिश की.
अच्छा, इंसानों पर कैसे, ये थोड़ा बताइए.
उन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के कुछ शारीरिक और शायद मानसिक अंतर भी यौन चयन का नतीजा हो सकते हैं.
जैसे पुरुषों का औसतन ज्यादा बड़ा और मजबूत होना, शायद ये पुराने जमाने में नरों के बीच हुई प्रतिस्पर्धा का नतीजा है। इसी तरह उन्होंने माना कि सुंदरता के अलग अलग पैमानों के आधार पर हुए चुनाव ने इंसानी नस्लों के बीच त्वचा के रंग या चेहरे की बनावट जैसे फर्क पैदा किए होंगे।
लेकिन जैसा आपने पहले कहा, उनके इन विचारों में उस समय की सामाजिक सोच का असर दिखता है ना?
हाँ बिल्कुल, खासकर लिंग और नस्ल को लेकर उनके विचार उस विक्टोरियन युग के नजरिए से प्रभावित लगते हैं। इसे हमें आज के संदर्भ में समझना होगा। लेकिन उनका मूल तर्क ये था कि प्रजनन से जुड़ी पसंद नापसंद ने भी इंसानी विकास में भूमिका निभाई है।
ठीक है, तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो इस किताब के सबसे बड़े संदेश क्या हैं? मतलब मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं?
मेरे लिए तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इंसान प्रकृति से अलग या ऊपर नहीं है, बल्कि उसी का अटूट हिस्सा है। शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हमारी नैतिकता, सब कुछ जानवरों की दुनिया से जुड़ी एक लगातार बहती धारा का हिस्सा है। कोई खास दर्जा नहीं है हमारा।
बिल्कुल सही। और दूसरा बड़ा संदेश क्या होगा?
दूसरा है यौन चयन की ताकत। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन के लगभग बराबर खड़ा कर दिया। ये सिर्फ दिखावटी चीज नहीं, बल्कि प्रकृति में सुंदरता, विविधता और यहाँ तक कि कलात्मकता पैदा करने वाला एक मुख्य इंजन है।
अच्छा,
ये उन चीजों को समझाता है जो सिर्फ सबसे योग्य के बचने के सिद्धांत से समझ नहीं आती। सोचिए, संगीत, कला, फैशन, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इस यौन चयन की गूंज हो सकती है।
ये तो दिलचस्प नजरिया है। और तीसरा
और शायद दार्शनिक तौर पर सबसे हिला देने वाला विचार, हमारे मन और नैतिकता की प्राकृतिक जड़ें।
हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है।
ये सोचना कि हमारा जमीर, हमारी दया, हमारी तर्क करने की क्षमता, ये सब जानवरों की सामाजिक आदतों से विकसित हुई हैं। ये नैतिकता को किसी ऊंची अलमारी से उतार कर जीव विज्ञान का हिस्सा बना देता है।
तो मतलब हमारी अच्छाई की क्षमता भी विकास का ही एक उत्पाद है।
डार्विन के अनुसार हाँ, जब हम किसी की मदद करते हैं तो शायद हम अपने उन पुरखों की विरासत को जी रहे होते हैं जिनके लिए साथ मिलकर रहना जिंदा रहने के लिए जरूरी था।
चौथा अहम संदेश क्या है?
चौथा है पूरी इंसानियत की एकता। डार्विन ने जोर देकर कहा कि हम सब एक ही परिवार हैं जिसकी जड़ें अफ्रीका में हैं।
हाँ, मोनोजेनिज्म।
जी, बाहरी फर्क चाहे जो हो, अंदर से हम सब एक ही प्रजाति हैं। ये उस जमाने में नस्लवाद को वैज्ञानिक जामा पहनाने की कोशिशों के खिलाफ एक मजबूत आवाज थी।
और पांचवा
कि हम अपने विकास के इतिहास को अपने अंदर लेकर चलते हैं। वो अवशेषी अंग, वो अचानक आने वाला डर या गुस्सा, किसी समूह से जुड़ने की हमारी चाहत, ये सब हमारे लाखों साल पुराने अतीत की निशानियां हैं, उसकी गूंज हैं।
ये तो सचमुच बहुत गहरे विचार हैं। और कमाल की बात यह है कि ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है।
हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि इसके विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब हो सकता है।
हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। सबसे पहले तो शायद खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद मिलती है, है ना?
बिल्कुल, ये किताब एक तरह से विकासात्मक मनोविज्ञान, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नींव रखती है। ये सोच कि हमारा दिमाग और बर्ताव लाखों सालों के विकास का नतीजा है।
हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कई बार वैसा क्यों करते हैं जैसा करते हैं।
हाँ, जैसे हम क्यों अपने समूह, परिवार, दोस्त, देश के लोगों के प्रति ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। शायद इसलिए कि हमारे पूर्वजों के लिए छोटे आपस में जुड़े समूहों में रहना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। इसे कबीलावाद कह सकते हैं।
अच्छा, और क्या फायदा हो सकता है इसे समझने का?
दूसरा, ये हमें थोड़ा विनम्र बनाती है और शायद पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक कर सकती है।
वो कैसे?
तो शायद हम उसके साथ ज्यादा सम्मान से पेश आए। ये नजरिया हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं और बाकी जीवों के साथ हमारा गहरा रिश्ता है।
ये तो बहुत जरूरी सोच है आज के जमाने में।
और
तीसरा,
ये समाज की बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाना सिखाती है।
कैसे?
देखिए, खुद डार्विन के काम में उस जमाने के पूर्वाग्रह दिखते हैं, जैसे नस्ल और लिंग पर उनके विचार। ये हमें सिखाता है कि वैज्ञानिक विचारों पर भी समाज का असर पड़ता है और हमें सावधान रहना चाहिए कि हम जीव विज्ञान का इस्तेमाल ऊंच नीच या किसी तरह के भेदभाव को सही ठहराने के लिए ना करें।
ये बहुत अहम बात है। हमें हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि रखनी चाहिए।
बिल्कुल। चौथा, हमारी सेहत को समझने में भी मदद मिलती है।
सेहत को? विकासवाद से?
हाँ, आजकल इवोल्यूशनरी मेडिसिन या विकासवादी चिकित्सा का क्षेत्र उभर रहा है। ये समझने की कोशिश करता है कि हमारी आज की कई बीमारियां, जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारियां, कैसे हमारे विकासवादी अतीत से जुड़ी हैं।
अच्छा, कैसे जुड़ी हैं?
हमारा शरीर जिस तरह के खानपान और जीवन शैली के लिए लाखों सालों में विकसित हुआ था, वो आज की दुनिया से बहुत अलग है और इसी बेमेल से कई समस्याएं पैदा होती हैं।
ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और कोई अनुप्रयोग?
हाँ, एक और है। ये कला, संगीत और सुंदरता को देखने का एक नया नजरिया देती है।
वो कैसे?
योन चैन का सिद्धांत बताता है कि खूबसूरती के प्रति हमारा आकर्षण, कला बनाने की हमारी इच्छा, संगीत सुनकर हमारे अंदर उठने वाली भावनाएं, इन सब की गहरी जड़ें शायद साथी चुनने और रिझाने की प्रक्रिया में हैं।
तो मतलब कला सिर्फ कला के लिए नहीं है?
डार्विन के नजरिए से देखें तो शायद नहीं। ये कला को कम नहीं करता, बल्कि उसे जिंदगी के और भी बुनियादी आवेगों से जोड़ता है। ये उसे और भी गहरा बना देता है ना?
हाँ, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है।
तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जा सकते हैं, मतलब सबसे अहम बात क्या है?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान प्राकृतिक दुनिया का ही एक हिस्सा है, पूरी तरह से उसी में समाया हुआ। हम कोई आसमान से गिरे फरिश्ते नहीं, बल्कि इसी धरती से उठे वानर हैं।
हाँ, एक ऐसी प्रजाति जिसे उन्हीं प्राकृतिक और योन चैन की ताकतों ने गढ़ा है, जिन्होंने जीवन के हर दूसरे रूप को आकार दिया है।
और मेरे लिए ये जुड़ाव और निरंतरता का विचार सबसे अहम है। इंसान और जानवर, तर्क और भावना, नैतिकता और सहज प्रवृत्ति के बीच कोई मोटी दीवार नहीं है।
सही कहा।
बस धीरे धीरे विकसित हुई जटिलता की एक लंबी सीढ़ी है। ये नजरिया हमें खुद को समझने का एक ज्यादा सच्चा और शायद ज्यादा विनम्र आधार देता है।
और ये किताब डार्विन की उस बौद्धिक हिल्लत का सबूत है जिसने न सिर्फ एक वैज्ञानिक क्रांति शुरू की, बल्कि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया, चाहे वो अंजाम कितना भी बेचैन करने वाला क्यों ना हो। बिल्कुल।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है, इस सच्चाई को जानने के बाद हम आज खुद को कैसे देखते हैं, प्रकृति में अपनी जगह को कैसे समझते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।